ओम शांति। आप सभी बहुत देर से बहुत अच्छी योग की अनुभूति में बैठे थे, बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे थे। जो भाई कमेंट्री करा रहे थे, बहुत सुंदर वाइब्रेशन फैल रहे थे। आपको भी लग रहा होगा ना ऐसा? तो आज हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति क्या है और उसका आधार परमात्मा शक्ति कैसे है, इस पर चर्चा करेंगे। यूं तो आप सब भी जानते ही हैं कि संपन्न और संपूर्ण स्थिति किसको कहते हैं। कोई बताएंगे? बताएंगे कोई किसको कहेंगे? देखो, जब हम कहते हैं बाप समान, तो बाप हमारे कितने? एक निराकार, एक साकार। निराकार शिव बाबा और साकार में ब्रह्मा बाबा, दोनों के समान बनना होगा ना। आत्मा को निराकार शिव बाबा के समान पूरी तरह से बनाना होगा, तो साकारी दुनिया में कर्म व्यवहार में रहते हुए, अपना कारोबार करते हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरे यज्ञ की संभाल करते हुए अपनी स्थिति को कैसे संपूर्णता को प्राप्त कराया, फरिश्ता बन गए, कर्मातीत बन गए। तो देखा जाए तो यदि हम कहें कि आत्मा को निराकार बाप समान बनना है, तो क्या बनना होगा? बाबा के सारे गुण, शक्तियां, ज्ञान, या कहें जो भी आत्मा के मुख्य गुण है, सात गुण है ना, उन सब का बाबा क्या है? सागर है। तो मुझे भी उन सभी गुणों में अपने आप को क्या बनाना होगा? मास्टर, मास्टर सागर। चाहे पवित्रता हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, शक्ति हो, सुख हो, ज्ञान हो, सभी सातों गुणों में आनंद हो, सभी में मुझे अपने आप को मास्टर बनाना है। और एकदम निराकारी स्थिति, भले ही कार्य व्यवहार में रह रहे हैं, लेकिन आत्मा के अंदर की स्थिति कैसी हो? एकदम निराकारी स्थिति में रहते हुए कारोबार में आए, जिसको बाबा अभी बहुत दिनों से साकार मुरलियों में हमें बार बार कह रहे हैं, बच्चे आत्मा की कितनी सूक्ष्म स्थिति है। यूं हम आत्मा आत्मा तो कहते रहते, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे एक एक समझना, सुनना सुनाना वो तो अलग बात है, समझना वो भी अलग, लेकिन अनुभव करना, उस स्थिति में या उस स्वरूप में स्वयं को टिकाना। तो बाबा कहते बच्चे इतनी सूक्ष्म है आत्मा, जो बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं देता, और तुम्हें पुरुषार्थ क्या करना है? जो इन आंखों से दिखाई देता है उसे किसी भी चीज को याद नहीं करना है। जो दिखाई दे रहा है उन किसी भी चीज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, कौन नहीं दिखाई देता? आत्मा और शिव बाबा परमात्मा। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो सूक्ष्मते सूक्ष्म है, जिसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया था, बच्चे खसखस कितनी बारीक होती है, लेकिन न आत्मा इतनी न परमात्मा, दोनों ही उससे भी सूक्ष्म है। तो खसखस तो फिर भी बहुत बड़ी है, लेकिन आप छोटे से छोटा पॉइंट पेंसिल से दीवार पर लगा के देखिए, बारीक से बारीक पेंसिल की नोक करके उसे भी आंखें देख लेती है। आप इमेजिन करिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उससे लाखों गुना माइक्रो देख लिया जाता है। जो पॉइंट लगाया उससे भी लाखों गुना माइक्रो साइंस के साधनों द्वारा देख लिया जाता है। तो आत्मा को इमेजिन करके देखिए कितनी सूक्ष्म है, परमात्मा भी कितना सूक्ष्म है। उस सूक्ष्मता को, उस गहराई तक जाकर के उतनी महीनता से उस सूक्ष्मता को जब तक हमने अनुभव नहीं किया, तो आप ऐसे नहीं एक दो बार में ही कोई अनुभूति हो जाएगी, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अटेंशन देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वरूप को और परमात्मा के भी ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करती है, उसको अनुभव करती है। और जब वो अनुभव करती है तो वो मास्टर अपने सातों गुणों का अनुभव करके मास्टर या स्वरूप बन जाती है। वो आत्मा की निराकारी स्थिति, या कहें जो निराकार बाप समान बनना है, चाहे सर शक्तियों में, ज्ञान में, निराकार शिव बाबा समान अपनी स्थिति को बनाना, उसमें भी आप देखो संपूर्ण और संपन्न। चंद्रमा को हमने देखा है, जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो कैसा संपूर्ण होता है, कितना संपन्न होता है, जरा भी कहीं भी एक किनारी भी उसमें बाकी नहीं रहती है, पूरा गोल, कहीं कोई दाग दिखाई नहीं देता है। तो जब हम अपनी संपूर्ण और संपन्न स्थिति को प्राप्त करने की मेहनत करते हैं, तो हमें अंदर से अपने आप को इतना संपन्न और भरपूर करना होगा सर्व प्राप्तियों में। क्योंकि बाबा कहते, बच्चे यूं तो मैंने आपको जन्म होते ही आपको मैंने वर्षे में सर्व प्राप्तियां कराई हैं, है ना। जो भी प्राप्तियां मैंने आपको कराई हैं, वो सर्व प्राप्तियां आप बच्चों को प्राप्त होती है, तो ज्ञान गुण भी एक की भी कमी नहीं। गुणों में भी हम क्या महिमा करते हैं, जो हमारी संपूर्ण स्थिति बनने वाली है उसकी हम क्या महिमा करते, सर्व गुण संपन्न। एक भी गुण कम हो, थोड़ा भी कुछ कम हो, तो सतयुग के आदि में नहीं आ सकते, तो वो संपूर्ण संपन्न स्थिति नहीं है, है ना। सर्व गुण सर्व शक्तियां, एक भी शक्ति कम नहीं, तो सर्व गुण सर्व शक्तियां, एक भी शक्ति की कमी नहीं हो, और ज्ञान की एक एक पॉइंट का हम स्वरूप बनते जाएं। क्योंकि आप देखो, ब्रह्मा बाबा को जब हमें फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को भी संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए, आपको याद होगा कि एक बार गुलजार दादी जब छोटी ही थी तो मुरली सुनने के बाद छत की मुंडेर पर बैठ करके मनन चिंतन कर रही थी, बाबा ने उसकी दोर बुद्धि की खींच ली और वतन में उसने फरिश्ता बाबा देखा, ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण रूप में देखा। वो समझ नहीं पाई कि क्या है, क्योंकि बाबा तो नीचे था, ऊपर तो कभी देखा ही नहीं था, तो वतन में बाबा दिखा, वो घबरा गई, वापस नीचे आ गई। और फिर बाबा के पास गई, बाबा को कहा, बाबा आप जैसा बाबा एक ऊपर भी है। कहा, अच्छा तुमने उससे पूछा नहीं तुम कौन हो। कहा, नहीं मैं तो डर गई, मैं वापस आ गई। कहा, नहीं तुम फिर से जाओ और उससे पूछना आप कौन हो। फिर से गई लेकिन बाबा ने राज खोला नहीं। फिर मुरली में बाबा ने सारा राज खोला और मुरली में बच्चों को धीरे धीरे बताया कि नीचे वाला बाबा प्रजापिता ब्रह्मा है और ये बाबा संपूर्ण ब्रह्मा है, ये फरिश्ता ब्रह्मा है। तो दादी ने उनको बताया था कि बाबा वो तो बहुत लाइट लाइट चमक वाला था। तो बाबा अक्सर बीच बीच में, जब बाबा को पता चला, ब्रह्मा बाबा को, कि ये मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है, तो बाबा ने क्या किया, बार बार मेहनत कर करके अपने को उस स्वरूप तक लाने की मेहनत की। और कहां तक मैं पहुंचा हूं ये देखने के लिए बाबा बीच बीच में संदेशी को भेजते थे और बाबा पूछते थे कि जाओ देख के आओ। उस बाबा में और इस बाबा में अब कितना अंतर रह गया है, क्योंकि जब वो अंतर मिट जाएगा तो समझो ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो बाबा ने बहुत अंदर अंदर मेहनत की, आप सबको पता होगा, चलते फिरते भी बाबा से ये भासना आती थी जैसे कोई फरिश्ता चल रहा हो साकार में। फरिश्ता बने नहीं थे लेकिन मेहनत इतनी कर रहे थे, तो आखिरी के समय से पहले पहले बाबा से फरिश्तेपन की भासना आती थी और ऐसे लगता था जैसे नारायण ही चल रहे हैं। तो वो भासना, वो महसूसता कहां से आई? उन्होंने अपने अंदर उस लक्ष्य को सामने रखते हुए, संपूर्णता का लक्ष्य हमारा बाबा ने दिया हुआ है एक श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, लेकिन वो देवता स्वरूप तो हमारा भविष्य में बनेगा, उसके पहले हमें कौन सा स्वरूप बनाना होगा? फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, निराकारी रूप में शिव बाबा के समान और साकारी रूप में फरिश्ता संपूर्ण ब्रह्मा के समान। तो अब हमें देखना होगा कि वो फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप या कहें संपूर्ण निराकारी स्वरूप बाप समान मेरी स्थिति कहां तक बनी है? ऐसा संपूर्ण बनना माना चारों किनारे छोड़ देना, है ना? कब संपूर्णता को प्राप्त होंगे? चारों तरफ के किनारे, चाहे देह, चाहे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, सबसे बुद्धि योग निकल जाए, किनारा छोड़ दे। माना बाबा हमें समझाते हैं कि जब हलवा बन जाता है, पूरा पक जाता है, तो क्या होता है? किनारे छोड़ देता है। या कोई भी चीज अच्छे से पक जाती है तो किनारे छोड़ देती है। ऐसे ही हमें भी अपनी स्थिति इतनी बंधन मुक्त बनाना है। अभी हम गीत सुन रहे थे ना, देहातीत, देह के बंधन से परे, न देह मुझे बांध सके, न देह के संबंधी मुझे बांध सके, न देह के पदार्थ, देह की दुनिया के वैभव, दुनिया के आकर्षण, कोई भी चीज मुझे बंधन में न बांध सके, न संसार के कोई। तो हमारी स्थिति सारे बंधनों से मुक्त, जो संपूर्णता वाली स्थिति होगी, संपन्न स्थिति, वो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं होगी, बंधन मुक्त। दूसरी बात, बंधन मुक्त माना न्यारी और प्यारी, सब बातों से न्यारे और एक बाबा के प्यारे, और उस संपूर्णता की स्थिति में, जैसे हमने कहा चंद्रमा में कोई दाग नहीं होता पूर्णिमा के दिन, पूरा किनारा, ऐसे ही सारे विकार खत्म, विकार जीत, विकारों का अंश मात्र भी नहीं, इतनी संपूर्ण पवित्र। सोच के देखो, विकारों का अंश भी नहीं, कोई भी विकार नहीं, उनके बाल बच्चे कितने हैं, किसी का भी अंश और वंश नहीं, कितनी सूक्ष्म प्यूरिटी की स्थिति है। इसी प्रकार से जब विकार खत्म हो जाएंगे तो विकर्मा जीत, विकार जीत भी, विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत। जब कोई बंधन नहीं, कोई कर्मेंद्रियों का भी बंधन नहीं रह जाएगा, कर्मेंद्रियों पर भी संपूर्ण कंट्रोल, कर्मेंद्रिय जीत, विकार जीत, विकर्म जीत, प्रकृति जीत, प्रकृति प्रकृति ये पांच तत्व से बना मेरा शरीर, देह भान को जीतना वो अलग चीज है, लेकिन इस देह में प्रकृति के द्वारा आने वाली जो परिस्थितियां हैं, आप सोचिए, देह पांच तत्वों से बनी है और बाबा ने कहा हुआ है इस शरीर में प्रकृति के तत्व भी अभी तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, उन तमो प्रधान तत्वों के कारण शरीर पर भी असर उसका आएगा, रोग आदि भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, उसमें भी मेरी स्थिति अचल। रोग आए, कुछ भी हो, हमने दादियों को देखा है ना, चाहे हमारे सामने दादी प्रकाशमणि साकार में बाबा मम्मा तो है ही उदाहरण, मम्मा को कितनी बड़ी बीमारी थी लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा अशरीरी स्थिति में रहती थी, चाहे मम्मा चाहे दादी प्रकाशमणि को देख लो, चाहे जानकी दादी को देख लो, चाहे गुलजार दादी को देख लो, जैसे कि शरीर को शरीर अलग है, शरीर अपनी भोगना अलग भोग रहा है और आत्मा अपनी मौज की स्थिति में परमात्म मिलन की अनुभूति में स्थित है, तो वो प्रकृति को भी जैसे कि उन्होंने जीत लिया और साथ साथ प्रकृति का जो प्रकोप होगा वो भी तो होने वाला है ना। प्रकृति के पांचों तत्व अपने समय प्रति समय अपना रूप दिखाएंगे, देखते भी रहते हैं, कहीं बाढ़ कहीं अकाल कहीं सूखा कहीं क्या, लेकिन वो प्रकृति की हलचल की स्थिति भी मुझे हलचल में न ला सके, मेरी अंदर की स्थिति अचल रहे, वो है ना संपन्न और कब अचल रह सकेंगे, अगर मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं उस समय परिस्थिति के अनुसार मुझे उस समय जिस शक्ति की जरूरत है, जिस गुण की जरूरत है, जिस ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनने की आवश्यकता है, अगर मैं वो स्वरूप बन जाती हूं तब तो मैं अचल रह पाऊंगी, और अगर नहीं बन पाती तो क्या होगा, वो परिस्थितियां मुझे हलचल में ले आएंगी। तो प्रकृति की इन परिस्थितियों में भी अचल, ये तभी हो सकता है चाहे कितना भी वायुमंडल हलचल का हो, प्रकृति हलचल करे, कोई व्यक्ति मेरे साथ कुछ ऐसा करे, हलचल में लाने वाली बातें करे, कर्म करे, व्यवहार करे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी मैं अचल रह सकूं, ये तभी संभव है जब मेरी स्थिति संपन्न और संपूर्ण हो। अगर थोड़ा भी असर आता है, माना जरूर कोई न कोई गुण शक्ति ज्ञान की स्वरूप बनने में कमी है, तो कमी है तो जरूर कहीं न कहीं दुख भी फीलिंग आएगी, कहीं अपमान की फीलिंग आएगी, कहीं अभिमान भी होगा, कहीं ऐसा भी लगेगा कि मैं झुकूं, मैं परिवर्तन करूं, कुछ सामने वाले को भी करना चाहिए, ये सब अगर आता है इसका मतलब क्या मेरी वो संपन्न और संपूर्ण स्थिति है? नहीं, कोई करे ना करे, कोई दुख दे सुख दे गाली दे अपमान करे मान करे जो भी करे, योगी की महिमा क्या गाई हुई है, निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख हार जीत गर्मी सर्दी हर चीज में समान एक रस स्थिति। तो जो संपन्न और संपूर्ण स्थिति वाली आत्मा होगी, जो उसके करीब पहुंच रही होगी, समीप पहुंचती होगी, वो भी स्थिति के समीप पहुंचती जाएगी। वो भी कैसी भी बातें आए, हलचल में नहीं आएगी, अचल रह सकेगी, साक्षी स्थिति में रह सकेगी। उसे किसी भी बात में दुख की फीलिंग नहीं आएगी, नथिंग न्यू। कोई नई बात तो हो नहीं रही है, आज भी बाबा ने पक्का कहा, कल आज ही है ना, 5000 वर्ष का ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है, सेकंड बाय सेकंड सीन रिपीट हो रही है, और पुराना मिटता जाता है, नया फिर बनता जा रहा है। तो ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन मैं अपनी स्थिति बनाने के लिए उस ड्रामा की पॉइंट को किस रीति से यूज करती हूं। क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे ये सब जो भी परिस्थितियां हैं उन सब में मुझे अपने को अचल स्थिति बनानी है, तो मेरी स्थिति प्रकृति जीत बने, तो वो कहेंगे संपन्न और संपूर्ण स्थिति। इसी प्रकार कर्मातीत व्यर्थ संकल्प को भी खत्म कर देते, कर्मातीत स्थिति में कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं, विकल्प का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विकारों को जीत लिया, विकारों के वश विकल्प तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी नहीं आ सकता। अगर व्यर्थ भी चलता है, माना आत्मा अंदर से भरपूर संपन्न नहीं है, तो व्यर्थ भी नहीं समर्थ। हर बात में वो ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट का स्वरूप बनकर अपने आप को समर्थ स्थिति में स्थित करेंगे। तो ऐसे इन सब बातों में आप देखते हैं कि जो कहा जाता है ना, एक नामी, वो एक के ही बनकर रहेंगे, एक के सिवाय उनकी बुद्धि कहीं भी नहीं जाएगी। एक नामी, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। कहने में तो आपने कितना जल्दी से बोल दिया, फटाफट बोल दिया, ये तो हमको प्रैक्टिस में आ गया है बोलना, लेकिन जो बोला वो अंदर में आप चेक करते रहो हर दिन हर परिस्थिति में, मेरा तो एक बाबा रहता है, या मैं औरों को भी देखती हूं, और बातों में भी मेरी बुद्धि जाती है, कहां कहां बुद्धि जाती है, क्या क्या करती है, तो इसलिए उन सब से बुद्धि को निकालना है। क्योंकि आप देखो, हाईवे पे गाड़ी चलती है तो कैसी चलती है, बड़ी रोड रहती है और फ्री रहते हैं, हाई स्पीड में चलती है ना, और सीधी सीधी चलती जाती है। तो अगर गली कूचे में चले जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड भी कम हो जाएगी और डिस्टरबेंस भी बहुत होगा, और कभी कभी रास्ता ही भटक जाते हैं, जाना कहीं और था, गली कूचे में शॉर्टकट करने के लिए हम गए, लेकिन कभी कभी देखने में आता है शॉर्टकट करते करते हम जाना था कहीं और, चले गए कहीं और, और फिर वापस आना पड़ता, फिर जाना पड़ता है, और ही लंबा रास्ता हो जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चों को भी बाबा ने श्रीमत रूपी हाईवे दिया हुआ है, है ना, सबके पास श्रीमत रूपी हाईवे है ना। पर उस श्रीमत रूपी हाईवे पे रोज हम कितना चलते हैं, किस किस को चलाना है, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, व्यवहार, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति, कृति, कितनी बातें, स्वभाव, संस्कार, सब कुछ, कर्मेंद्रियां भी, सबको मुझे श्रीमत के हाईवे पर चलाना है। अगर मैं श्रीमत के हाईवे पे चलती रहती हूँ, हर चीज को उसके अनुसार चलाती रहती हूँ, तो मंजिल तक पहुंचने में मुझे सहजता हो जाएगी, बाबा की मदद भी बहुत मिलेगी। लेकिन गली कूचे में भटकने से माया का वार हो जाता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे एक नामी बनो, और साथ साथ आप अपने आप को एकाग्रता में लाओ। जितना एक नामी होंगे उतना ही आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती जाएगी, और जितनी एकाग्रता बढ़ेगी तो आपके अंदर बाबा से शक्ति इतनी जमा होती जाएगी। क्योंकि बाबा हमको रोज कहता, बच्चे याद से ही शक्ति जमा होती है। पर याद कैसी हो, एक से ही तुम्हारा ताल्लुक रहे तो तुम्हारे अंदर याद से शक्ति भरती जाएगी। बाबा ने हमें समझा, एक से ही ताल्लुक रहे तो वो शक्ति जितनी भरती जाएगी तो वो शक्ति हमको एकरस स्थिति बनाने में मदद करती है, एकाग्रता आती जाती है। फिर इसके साथ साथ जितना हम एकांत में रहते, एक के ही अंत में खोए हुए हैं, तो हमारे अंदर शक्ति जमा होती जाती है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे जितना तुम्हारे अंदर ये शक्ति जमा होती जाती, एकरस स्थिति बनती जाएगी, तो आपके अंदर अपने आप ही इकोनॉमी भी करते जाएंगे। क्योंकि किसी भी वेस्ट चीज को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो विकर्म हो, विकल्प हो, व्यर्थ संकल्प हो, व्यर्थ बोल हो, व्यर्थ कर्म हो, किसी को भी कंट्रोल करना है तो आसानी से हम कंट्रोल कर सकते क्या? उसके लिए शक्ति चाहिए। तो शक्ति कहाँ से मिलती है? एक तो मिलती है, जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो, चित्रों के सामने बैठ जाओ, ज्ञान का चिंतन करो, इतना मनन चिंतन करो कि ज्ञान दिल रूपी कागज पर उतर जाए। दिल रूपी कागज पर उतर जाए माना अंदर तक चला जाए, संस्कारों में भर जाए। तो बाबा कहते, बच्चे नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, और नॉलेज इज डिवाइन वर्चू। तो ज्ञान से हमें लाइट समझ भी मिली, और उस समझ को जब हमने प्रैक्टिकल अपनाया, स्वरूप में लाया, तो उससे क्या मिली? हमारे अंदर शक्ति जमा होती है। और वो शक्ति जितनी हमारे अंदर जमा होती जाती, तो अपने आप ही हमारे कर्मों में सब में श्रेष्ठता आती जाती, तो डिवाइन वर्चूज, दिव्य गुण हमारे अंदर जमा होते जाते। क्योंकि जितना हम उस ज्ञान के आधार से और परमात्मा याद के द्वारा अपने आप को कंट्रोल करते जाते, अर्थात अपने संकल्पों को। मुख्य सारा खेल किसका है? संकल्पों का। आज दादी जानकी जी को हम देखते हैं, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। कोई आते से ही बन गई थी क्या? जब आई तब थी क्या? नहीं थी ना। बनी कैसे? वो शक्ति उनके अंदर कहां से आई? उन्होंने लाई। कैसे लाई? बहुत उन्होंने मेहनत की अपने ऊपर, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपने संकल्पों को सदा ही शुद्ध संकल्प रखना है, समर्थ संकल्प करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है ना, और शांत रखना है मन को। कैसी भी बातें आए, अंदर से मन की स्थिति बहुत शांत रखनी है। ये प्रैक्टिस करते 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 दादी ने इतना मन को जीत लिया, कंट्रोल कर लिया कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड बन गई। तो जब एक दादी बन सकती है, वो इतनी मेहनत कर सकती है, हमारे बीच ही तो थी ना, हमारे जैसी ही थी। चलो बाबा मम्मा को हमने नहीं देखा लेकिन दादियों को तो देखा है। तो वो पुरुषार्थ कर सकते इतनी एज में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो अपने संकल्पों को इकोनॉमी करनी है, अपने बोल की इकोनॉमी, अपने एनर्जी की इकोनॉमी, कहीं भी वो किसी भी बात में वेस्ट ना हो। हर बात में जितना हम इकोनॉमी करते जाते तो अंदर से एक बाबा हमारा पक्का होता जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि बाबा के द्वारा मेरे अंदर कई प्राप्तियां हुई है, कोई विशेषताएं आई हैं, कोई गुण आए हैं बाबा का बनने के बाद। बाबा ने अपनी सेवा कराने अर्थ मेरे में कई योग्यताएं भर दी है, कार्य उसका है, बाबा को कराना है, बाबा मुझसे करा रहा है। लेकिन कभी कभी बाबा करण करावन हार है, ये मेरी बुद्धि से मिस हो जाता है और हम क्या समझने लग जाते, मैं ही इतनी अच्छी हूं, मेरे में ये विशेषता है, मेरे में ये योग्यता है, मैं ही गुणवान हूं, मैं बहुत अच्छी सेवा कर सकती हूं। लेकिन बाबा हम बच्चों को सावधान करते, बच्चे ये प्रभु देन है, ये जो भी कुछ आपके अंदर विशेषता है ये कहां से आई है? प्रभु देन है। प्रभु देन को अगर आप अपना समझकर उसका अभिमान करते हैं कि ये मेरी है, मैं ऐसी हूं, ये अभिमान हो गया ना, तो किसका अपमान किया? बाबा का। दिया उसने है चीज उसकी, वो मेरे अंदर भरकर मेरे से सेवा करवा रहे, लेकिन मुझे उसका अभिमान हो गया तो मैंने बाबा का अपमान किया। और ऐसा करना माना बाबा हमें सावधान करते, ये है महापाप। ऐसा पाप कभी भूल करके भी हमें नहीं करना है, या ऐसा संकल्प भी कभी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तो जितना जितना हम संकल्पों पर कार्य करते जाते, क्योंकि कहते हैं ना संकल्प से ही सृष्टि बनती है, जैसे आपके संकल्प होंगे ऐसे ही आपके द्वारा वाइब्रेशन निकलेंगे, आपके चारों ओर वही लाइट का ओरा बनेगा जैसे आपके संकल्प होंगे। नेगेटिव संकल्प होंगे तो नेगेटिव ओरा बनेगा, पॉजिटिव संकल्प होंगे तो पॉजिटिव ओरा बनेगा और वो संकल्प भी वायुमंडल को निर्माण करते हैं। तो हमें कौन सा काम करना है, नेगेटिव ओरा तैयार करना है या पॉजिटिव ओरा? संपूर्ण और संपन्न स्थिति का ओरा कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा ना, समर्थ प्योर वाइब्रेशन का होगा, श्रेष्ठ संकल्पों का। तो ऐसे वाइब्रेशन, देखो चाहे नेगेटिव वाइब्रेशन हो उसका भी असर आता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन का भी असर व्यक्ति पर आता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाती हूं, हो सकता है आपने सुनी भी हो। एक बार दो फ्रेंड विदेश में पढ़ रहे थे, अमेरिका में, और दोनों साथ में एक ही कार में जा रहे थे। बाबा का एक बच्चा, उसमें बाबा का बच्चा था। उनके माता पिता ज्ञानी थे और उनका यहाँ मधुबन में निर्वेर भाई और सारे बड़ों से बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो क्या हुआ, जब वो जा रहे थे थोड़ा अंधेरा हो गया था तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो एक बच्चे को बहुत चोट आई, एक को कम आई, वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो डॉक्टर हंसा रावल को निर्वेर भाई ने फोन किया, कैसे ऐसे फलाने अनन्य भाई का बच्चा वहां पर एक्सीडेंट हो गया है और वो वहां हॉस्पिटल में एडमिट है। तो डॉक्टर हंसा रावल को कहा कि आप वहां जाकर देखें। जानते हैं सभी डॉक्टर हंसा रावल को? तो उसको कहा वहां जाकर देखे। उसने वहां जाकर देखा तो वो बच्चा जो है वो जगह जगह से फ्रैक्चर हो गया था, खून बह रहा था। उसने वहां जो डॉक्टर उसको देख रहे थे उससे पूछा कि इसकी क्या स्थिति है, ये बच सकेगा? तो डॉक्टर ने कहा बहुत खून बह रहा है, ये बच नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। पर डॉक्टर हंसा रावल जब वहां गई, उसने उस बच्चे को देखा तो बच्चे के पीछे उसे बाबा ज्योति बिंदु चमकता हुआ दिखाई दिया। उसको ये निश्चय हो गया कि नहीं, इस बच्चे का रक्षक बाबा है, ये बच्चा बचेगा जरूर। उसने डॉक्टर को कहा कि ये करो ताकि ये खून बहना बंद हो जाए। बच्चा तो कोमा में था, बेहोश था, और बच्चे के कान में जाकर के जोर जोर से बोला, बेटा जागो, जागो, देखो तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, तुम क्या ऐसे बेहोश रहोगे, होश में आओ, तुमको उनसे मिलना है ना, नींद से जागो। ऐसे कह के उसको दो चार बार उसके कान में ये कहा और उन डॉक्टर्स को वो बोल के गई कि इनके लिए मैं इनके माता पिता से इनका, उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन कर दो। तो बोले ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, एक तो ये बेहोश है, दूसरे इसके माता पिता का कोई लेटर नहीं है हमारे पास, उसके बिना हम ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो डॉक्टर हंसा रावल ने कहा कि नहीं, आप ऑपरेशन करो, मैं माता पिता का लेटर आपको मंगा के देती हूँ। उसने फोन करके बोला, लेटर मंगाया, लेटर लाके दिया। और जब वो ऐसा सब बोल के गई तो सचमुच में दो ढाई घंटे के बाद वो बच्चा होश में आ गया। और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको फोन किया, डॉक्टर हंसा रावल को, कि वो बच्चा होश में आ गया है और आप हमें लेटर दे दो तो हम इसका ऑपरेशन कर देते। तुरंत लेटर उन्होंने भेजा और उसका ऑपरेशन हुआ। तीन दिन में ऑपरेशन के बाद फिर से वो होश में आ गया। ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा बेहोशी वगैरह रहती है ना, तो उसके बाद वो फिर से होश में जब आया तो वो फिर से उससे मिलने के लिए गई। तो उससे मिलके उससे पूछा कि अब तुमको कैसा लग रहा है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मेरा वो जो दोस्त है ना, वो मुझे बहुत ब्लेम कर रहा है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं उसके कारण बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। अब वो दोस्त तो दूसरे कमरे में एडमिट था और वो कोमा में था, पर वो डॉक्टर हंसा रावल को कह रहा है कि बाकी तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरा दोस्त जो है ना वो बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत ब्लेम कर रहा है, मैं उसके कारण बहुत दुखी हूं, परेशान हूं। तो उसने कहा मैं उससे मिलूं जा करके। हाँ हाँ, आप उससे मिलो। तो डॉक्टर हंसा रावल उस वाले कमरे में गई जहां उसका दूसरा एडमिट था, उसको बहुत कम चोट आई थी, तो वो उससे जाकर के मिली, उसको पूछा कैसे हो। लेकिन उससे बात करते समय भी वो उसी को दोष दे रहा था कि उसने ऐसी गाड़ी चलाई, ये किया, एक्सीडेंट हो गया, देखो मैं आज यहां पड़ा हूं, जो भी है। मना वो अपने उस फ्रेंड को ब्लेमिंग कर रहा था और उसके लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स अभी भी कर रहा था। तो डॉक्टर हंसा रावल ने उसको समझाया कि बेटा देखो, तुम्हारे उस फ्रेंड की तो कोई इसमें गलती नहीं है, अंधेरा था, दिखा नहीं, गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट हो गया, पर चोट तो उसको ही सबसे ज्यादा आई है, आपको तो बहुत कम चोट आई है, तो आप उसको ब्लेमिंग क्यों कर रहे हो? क्या आप आज से उसके लिए शुभ भावना रख सकते हो? आज से ब्लेमिंग करना बंद करोगे? उसको समझाया, उसने कहा हाँ ठीक है, आज से मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा और मैं उसके लिए शुभ भावना रखूंगा। तो उसने कहा प्रॉमिस करो। बोले हाँ प्रॉमिस। तो उसने वहां शुभ भावना रखना शुरू की, नेगेटिव थॉट्स जो ब्लेमिंग के उसके मन में बार बार आ रहे थे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, वो उसने स्टॉप किए। तो जब वो स्टॉप किए तो यहां इसकी हीलिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लगी। किसकी? वो जिस फ्रेंड को ज्यादा चोटें आई थी उसकी हीलिंग बहुत जल्दी होने लगी, और आप सोचो वो बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो गया। कितना फ्रैक्चर था, क्या था? तो आपको ये बताने का मेरा भाव यह है कि नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्रेशन उस फ्रेंड के उसको कोमा में भी परेशान कर रहे थे। आत्मा को होश नहीं है, शरीर में तो है ना, आत्मा शरीर में तो है ना, निकल के थोड़ी चली गई, लेकिन उस व्यक्ति के नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्रेशन उसको कोमा में भी, बेहोशी में भी असर करते हैं। सोचो कितना नेगेटिव संकल्पों का, नेगेटिव वाइब्रेशन का दूसरे पर असर होता है, तो खुद पर भी तो होता होगा, होता है या नहीं? अगर दूसरे पर इतना ज्यादा उसका असर होता है तो खुद अगर नेगेटिव थॉट जो चलाने वाली आत्मा है उसको क्या होगा? कभी कभी हम अपने लिए भी, दूसरे की बात छोड़ो, खुद के लिए भी बहुत नेगेटिव थॉट्स चला लेते हैं। जब हम कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अटेंशन देते हैं और जितना चाहते उतना हो नहीं पाता है, वैसी स्थिति नहीं बना पाते, या कोई अपने कड़े स्वभाव संस्कार को हम जीत नहीं पाते हैं, तो हम अपने प्रति भी दिल शिकस्त होकर के क्या करते, नेगेटिव थॉट्स चलाते। तो वो नेगेटिव थॉट्स खुद के लिए भी नुकसानदायक है या फायदे वाले? नुकसान करेंगे ना, क्या करेंगे खुद के लिए। इसलिए जो जितना नेगेटिव चलाता है उतना ही संकल्पों की एनर्जी वेस्ट करता है, और जितना एनर्जी वेस्ट होती है समझो आत्मा की जितनी शक्ति उसने योग के द्वारा जमा की वो शक्ति सारी क्षीण हो गई, उसने वेस्ट भी कर दी। तो जमा जितनी की नहीं उससे ज्यादा कई बार हम वेस्ट कर देते। तो कई बार हम नहीं कहते आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, दिन भर में हम कमाई कितनी करते, शिव बाबा से कितना योग लगाते, कितना हमारे पास बचता है, खर्चा इतना ज्यादा दिन भर में कर देते कि बचत हमारी हो ही नहीं पाती। तो जब तक जमा का खाता हमारा बढ़ेगा नहीं तब तक आत्मा शक्तिशाली बनेगी नहीं, और जब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी तो पुरुषार्थ के अंदर आने वाले विघ्न या मंजिल तक पहुंचने में रास्ते में आने वाले विघ्नों को हम जीत कैसे सकेंगे? हमारे में शक्ति नहीं है, हम उसे चाहे संकल्पों में वेस्ट कर रहे, बोल में वेस्ट कर रहे, समय वेस्ट कर रहे हैं, कर्मों में व्यर्थ कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा वेस्टेज ज्यादा है, लीकेज ज्यादा है। तो हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली और संपन्न संपूर्ण अर्थात भरपूर नहीं बन पाएगी, और जब भरपूर नहीं होगी तो ब्रह्मा बाप समान या शिव बाप समान कैसे बन पाएगी? तो विघ्नों को विनाश करने के लिए भी हमें अपने अंदर शक्ति चाहिए। वो शक्ति जैसे एक तो हमने कहा ज्ञान से, जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करके एक एक ज्ञान की पॉइंट को समय पर जिस समय जिस पॉइंट की जरूरत है उस समय अनुसार उसका स्वरूप बनते तो आत्मा में शक्ति जमा होती है। जैसे आप सोचो किसी की डेथ हो गई संबंधी की, आपको बाबा ने तो बताया हुआ है कि बच्चे आत्मा तो अजरमर अविनाशी है, आत्मा तो अपना पार्ट बजा रही है, इसका पार्ट इस शरीर में पूरा हुआ, दूसरा पार्ट बजाने गई है। नॉलेज तो है, लेकिन बहुत नजदीक संबंधी की डेथ हुई तो आप उस संबंध की रीति से ही सोच रहे हैं। आप भले सोच रहे हैं आत्मा है फलाना है पार्ट पूरा हुआ है, लेकिन अंदर में वो पॉइंट का आप स्वरूप नहीं बने तो आपकी आत्मा में शक्ति नहीं आती उस परिस्थिति का सामना करने की। आप उस परिस्थिति में अचल रह सको, हलचल में ना आओ, ये कब होगा? जब आप उस समय आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मैं भी आत्मा हूं ये भी आत्मा, तो एक जन्म के लिए पार्ट था हमारा, इनसे तो केवल ये कर्मों का बंधन था, ये तो संबंध है ही नहीं, एक संबंधी तो मेरा शिव बाबा है, ये अंदर जब उसका स्वरूप बन गए उसमें टिक गए तो आपके अंदर शक्ति जमा होती है और वो शक्ति आपकी स्थिति को बनाती है। तो ज्ञान से भी शक्ति, योग से भी शक्ति, दिव्य गुणों से भी आत्मा के अंदर शक्ति आती है। मान लो आज कोई परिस्थिति सहनशीलता की आई, सहन करना है, और आप कहते मैं क्यों सहन करूं, मैं सहन करूं क्या, इसको भी तो थोड़ा सहना चाहिए, मुझे ही कहते हैं इस बार तो मैं सहन नहीं करूंगी, तो आपके अंदर सहनशीलता का गुण आएगा? गुण आएगा, और गुण नहीं आया और आप उस परिस्थिति को सहन नहीं कर सके तो आप संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। तो संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए इसलिए कहा सर्वगुण, जैसी परिस्थिति उस अनुसार हमें कौन सा गुण चाहिए, कहीं धीरज का, कहीं शांति का, कहीं प्रेम का, विभिन्न गुण है, विभिन्न शक्तियां हैं, उन सबको हम जब तक अपने अंदर धारण नहीं करते तब तक हम संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। संकल्प किस आधार पर चलते, अगर ज्ञान युक्त है, योग युक्त है, दिव्य गुणों की धारणा से युक्त है, शक्तियों से युक्त संकल्प है, तो आपकी स्थिति कैसी है? अचल, हलचल वाली नहीं। और जब हलचल है, अगर कहते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाए, जब पूरा भरा है तो वो छलकता नहीं है। तो हम आत्मा जितना अपने आप को हर चीज से संपन्न करती जाएगी, जितनी भरपूरता आती जाएगी, उतना अंदर से आत्मा संतुष्ट होती जाएगी। अचल तो बनेगी ही, लेकिन साथ साथ संतुष्ट भी होती जाएगी। और जितना संतुष्टता आती जाएगी उतना प्रसन्न चित्त भी होगी, है ना? प्रश्न सब खत्म हो जाएंगे। तो आप सब अपने आप को ऐसे ही हर विपरीत परिस्थिति में, हलचल की परिस्थिति में अचल रखते हुए न्यारे और प्यारे बनकर एकदम बाबा की एक नामी एक नौमी एक रस स्थिति वाले बनकर के, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, बहुत सूक्ष्म स्थिति, एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म, उस पॉइंट बाबा के साथ मैं भी आत्मा पॉइंट स्वरूप बनकर अपनी एकदम बंधन मुक्त, हर तरह से विकार जीत, विकल्प जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, निद्रा जीत, सबको जीत कर, कर्मातीत, ऐसी एकदम पावरफुल स्थिति में अभी हम 5 मिनट बैठे।